पृष्ठ संख्या 23। दो, राम की शक्ति पूजा की कथा वस्तु के उपास्थापन के समानांतर मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की काव्य वस्तु की प्रस्तुति को रखने पर सर्वप्रथम दोनों की वस्तु प्रकृति के साम्य वैषम्य का विचार किया जाना आवश्यक है। शीर्षकों से ही यह सूचित हो जाता है कि निराला ने पौराणिक स्रोतों का आधार लिया है, जबकि मुक्तिबोध ने अपने युग से संबंधित आत्म अनुभवों के बेबाक निर्बाध संप्रेषण पर स्वयं को केंद्रित रखा है। दोनों कविताओं की कथा प्रकृति के विश्लेषण से पूर्व अंधेरे में का उपस्थापन क्रम भी जान लेना उपादेय होगा। राम की शक्ति पूजा की भांति अंधेरे में भी खंडों में बांटकर लिखी गई लंबी कविता है। पहले दृश्य के पहले खंड के पांचवें दृश्य में अंधेरे में के काव्य नायक को सर्वग्रासी अंधकार में किसी अपरिचित की पदचाप सुनाई देती है। ध्वंस जैसी स्थिति का उसे आभास होता है और उसके समक्ष एक किमाकार उभरता है, शायद हनुमान का या मनु का। यह किमाकार दिखता तो है पर पहचान में नहीं आता। दूसरे अंश में नगर के बाहर पहाड़ी के पार अंधकाराच्छन्न वातावरण में किसी निस्तब्ध जल वाले सरोवर के मलिन दर्पण में एक श्वेत आकृति उभरती है जो हंसकर अपना परिचय देने का प्रयत्न करती है, किंतु काव्य नायक केवल हतप्रभ रह जाता है। अगले दृश्य में काव्य नायक को विस्मय विमूढ़ करते हुए वन प्रांतर पर बिजलियाँ कौंधने लगती हैं और घने अंधकार आच्छन पेड़ों के नीचे किसी तिलस्मी खोह का सीला द्वार धमाके के साथ खुलता है और एक लाल मशाल अंधेरे को लालिमा से रंग देती है, जिसमें अरुण कुहरे में साक्षात रहस्य जैसा एक रक्ताभ पुरुष आकृति उभरती है। पांचवा दृश्य इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ काव्य नायक कवि के मय में बदला जाता है, जो उस गौरववर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख वाली आकृति को देखकर एक ओर आतंकित होता है, दूसरी ओर संशयग्रस्त। अगले दृश्य में नायक उसे अब तक अनुपलब्ध अपनी अभिव्यक्ति अपनी आत्मा की प्रतिमा के रूप में पहचानता है। इसी समय मशाल बुझ जाती है और नायक फिर अंधेरे में डूब जाता है। उसे लगता है कि उसकी आँखों में जैसे काली पट्टियाँ बांधकर क्रास में विजड़ित क्राइस्ट की भांति उसे किसी अतल गर्त में गिरा दिया गया है। अचेतन स्थिति में रचनाकार के निर्देश के अनुसार यह कविता का प्रथम खंड है। दूसरा खंड अवचेतन परक फंतासियों का है। काव्य नायक को कुछ ध्वनियाँ सी सुन पड़ती हैं और उसे लगता है कि उससे कोई कुछ कहना चाहता है। आधी रात के उसके घर की सांकल बजती है और उसके सामने फिर वही कोहरे में घिरा हुआ चेहरा उभरता है जो उसे तिलस्मी खोह में दिखा था और जो जब तब उसकी सुविधा असुविधा का ध्यान रखे बिना उसके सामने कहीं भी उपस्थित हो जाया करता है और उसके हृदय को बिजली के झटके देता है, संकेतों में बताने का प्रयत्न करता है। उसके चेहरे पर अरुणोदय का आलोक है, गालों पर पठार की चट्टानी चमक है और उसकी आंखों में शांत की चमकती लहरें हैं। पृष्ठ संख्या 24। स्नेह अभिभूत होकर उसे बाहों में बांध लेना चाहता है, तभी उसे ध्यान आता है कि वह तो अतल अंध गर्त में गिरा हुआ है और उसमें उठने की भी शक्ति नहीं है। इस प्रसंग में लेखक सफाई देता है कि उसे अपनी दुर्बलताओं से लगाव है, जिसके कारण वह इस आत्मीय व्यक्तित्व से डरता कतराता रहता है। वह व्यक्ति काव्य नायक को अंधकारमय गर्त से ऊपर उठाने की प्रेरणा देता है। वह व्यक्ति काव्य नायक को अंधकारमय गर्त से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, किंतु नायक को ऊंचाइयों से डर लगता है। नायक ना उसकी प्रेरणा के अनुसार सक्रिय हो सकता है, ना ही उसे छोड़ने को तैयार हो सकता है। नायक पंगुसा हो जाता है, उसमें सतचित वेदना की आग जल उठती है और वह जंग खाई सिटकनी गिराकर बाहर की ओर देखता है। बाहर उसे कुत्तों सियारों की आवाज़ों से गूंजता हुआ सर्द अंधेरा दिखता है। सहसा ही कोई पक्षी चीख उठता है और उसे बताता है कि उस व्यक्ति को उसे खोजना है क्योंकि वही उसका गुरु है। तृतीय खंड में काव्य नायक के क्रमागत स्वप्न तथा जागृति के बीच की मनः स्थिति के अवचेतन परक बिंबों की श्रृंखला है। रात के 2 बजे हैं। काव्य नायक सिविल लाइन्स के अपने कमरे में पीटा हुआ सा अकेला पड़ा हुआ है। दिए की पीली रोशनी में उसके सामने संसार अव्यवस्थित निर्जीव चित्राकृतियों के रूप में उभर रहा है। श्रृंगालों की आवाज़ों के साथ रेलगाड़ी के पहियों की ध्वन काव्य नायक को किसी असंभावित दुर्घटना की संकेतक लगती है। ताल्स्टाय नुमा कोई हाय हाय करती हुई एक आकृति उभरती है जिसे वह अपनी किसी भावी रचना का केंद्रीय संवेदना मानता है। फिर उसे निस्तब्ध नगर के आधी रात के अंधेरे में दूरागत बैंड की धुन सुनाई देती है और उसे एक जुलूस पास आता हुआ लगता है जिसमें नीला लोक है और धीरे धीरे गैस लाइट की नीलाई में सौंलाया जुलूस अपना रूप उजागर करता है। सौंलाए अपार्थिव चेहरे उसके पीछे काले सबल अश्वों का जत्था जैसे किन्हीं शवों की शोभा यात्रा हो, जैसे उसका अवचेतन ही जलूस के घटकों में से एक हो। आतंकित मन के भयावह बिंबों से भरी नींद में सोए हुए शहर में अकेला काव्य नायक जाग रहा है और यह रोमांचकारी जादुई कारामात देख रहा है। जुलूस विचित्र है, प्रभावशाली यूनिफॉर्म पहने हुए कंकाल शेष वर्ण वाले, जिनमें से कई एक के चेहरे काव्य नायक के नगर के ही प्रतिष्ठित पत्रकारों के चेहरों से मिलते हैं। बैंड वालों के पीछे आधुनिकतम शस्त्र अस्त्रों से सन्नद्ध पथरीले चेहरे वाले सैनिक का मार्च करता हुआ दल, उसके पीछे अश्वरोही सेना जिसके सैनिकों के चेहरों के आधे भाग सिंदूरी गेरुए हैं और आधे कोलतारी, भैरों चमकते हुए। उनमें सेना के सभी पदाध्यक्ष हैं, कमर में पिस्तौलें और कंधे से कमर तक तिरछी कारतूसी पेटियां, धारदार दोवेली, क्रुद्ध दृष्टि। काव्य नायक को इस संपूर्ण सैन्य दल में कई चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। कई एक तो परिचित लेखकों कवियों के चेहरों से मिलते जुलते हैं। प्रकांड आलोचक मंत्री यहाँ का कि शहर का कुख्यात हत्यारा डुमाजी उस्ताद भी उसे इस जुलूस में शामिल देखता है। काव्य नायक उन सभी के स्वार्थन्ध चरित्र से परिचित हो जाता है, किंतु इसी समय जुलूस के कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उसकी हत्या का आदेश उद्घोषित कर देते हैं। पसीने से नहाया हुआ काव्य नायक भागता है और इसी बिंदु पर स्वप्न टूट जाता है। जाग जाने पर उसके सामने यह सच्चाई उभर आती है कि हर रात में इन्हीं गूढ़ मृतात्माओं का जुलूस निकलता रहता है और दिन में यही कार्यालयों, केंद्रों और घरों में मिलजुल कर कुचक्र रचते हैं। वह आतंकित हो जाता है कि उसे इस भयानक वास्तविकता की जानकारी के लिए और भी दंडित किया जाएगा। पृष्ठ संख्या 25, चौथा खंड, स्वप्नांकित काव्य नायक प्रातःकालीन 4 का गजर सुनकर जाग तो जाता है और उसे खखारते हुए नल की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, किंतु वह अपनी स्वप्न जनित शिथिलता अशक्तता के कारण रात के अंधेरे में ही डूबा रहता है। वही आतंककारी बिंब प्रसारित हो उठता है। सेना ने सड़कें घेर ली हैं, मार्शल ला लागू कर दिया है। लोग बाग इधर उधर तिंग मूढ़ होकर भाग रहे हैं। विषाद बरगद के नीचे रहने वाले गृहहीन दीन दलित लोग अंधेरे में समाहित हो गए हैं। एक नई बात यह होती है कि इस गरीब बस्ती में रहने वाला एक पागल इस समय एक आत्मोद्बोधपूर्ण गीत गाने लगता है जिसका गद्य अनुवाद मुक्तिबोध स्वयं प्रस्तुत करते हैं। मानो पर्दे के पीछे से निकलकर गीत का आशय यह है कि आदर्शवादी और सिद्धांतवादी भारतीय लोग आचरण भ्रष्ट हो गए हैं। उनमें ना संवेदना बची है और ना करुणा। अपना पेट भरने के लिए वे देश और उसके सांस्कृतिक आदर्शों को तिलांजलि दे चुके हैं। कवि स्वयं को भी उन्हीं में शामिल मानता है और साथ ही वह अपने को सिरफिरे पागल से से एकात्म करता है। कवि अपनी आत्मा के प्रतिनिधि पागल को इन सारी विद्रूपताओं के लिए धिक्कारता भी है और उसकी मानवीय चिंता को लेकर उसके प्रति सहानुभूति भी व्यक्त करता है। अंधकार अब भी छाया हुआ है और काव्यनायक बरगद के पास अंतर्निहित वेदना और चिंता में बेचैन गुमसुम सा खड़ा हुआ है। अगले खंड में चिंता मग्न काव्यनायक अपने कंधों पर अचानक किसी के हाथ का स्पर्श अनुभव करके चौंकता है। बरगद का एक पत्ता भी इसी समय गिरकर उसके कंधे पर ठहर जाता है। उसे लगता है कि यह कोई प्रतीकात्मक संकेत है। स्वप्नानुभूत आतंक पुनः हावी हो जाता है। बंदूकें दग रही हैं और वह प्राणपण से भाग रहा है। अर्धमूर्छा की स्थिति में एक बंद मकान की प्रस्तर सीढ़ी पर बैठ जाता है और स्वप्न जैसी स्थिति में धरती के नीचे एक आदिम कंदरा में पहुंच जाता है, जहां वह प्रपात के प्राकृत जाल में मणियों और रेडियो एक्टिव रत्नों की चमक देखता है, जिसके कारण बेडौल गुहा एक व्यवस्थित रूप लेने लगता है। मुक्तिबोध एक बार पुनः उपस्थित होकर प्रतीकार्थ पर प्रकाश डालते हैं कि वे मणिरत्न उनके अपने अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष है। छठे खंड में अपने सांस्कृतिक रिकथ की अवहेलना के लिए भारतीय समाज के साथ अपने को भी उत्तरदायी मानते हुए काव्यनायक उस रिकथ की खामी प्रासंगिकता निर्धनता की ओर चलता इशारा करते हुए इस प्रकरण से विरत होता है, क्योंकि उसका मुक्तिबोध अब काव्यनायक को पीछे ठेलकर सामने आ जाते हैं। प्रयोजन संघर्ष की प्रेरणा देना है, इसलिए सीन बदलता है। फिर वही सांवला चौराहा, वीरान गेरुआ घंटाघर, गुंबद मरे हुए से जलते बल्ब, गुंबद विचरों में बैठे बूढ़े पंछी, उनके टूटे हुए पंख, बीट और तिनके, चौक के मध्य भाग में बंदूकधारी सैनिक और टैंकों का दस्ता। काव्यनायक फिर प्राणपण से भागता है। गलियों की कीचड़ उसके चेहरे और शरीर पर आ जाती है। भागते हुए काव्यनायक को अचानक तिलक की पाषाण प्रतिमा दिखती है, जो उसके पास पहुंचने पर उसे हिलती हुई सी लगती है। वह यह देखकर चकित हो उठता है कि प्रतिमा के थरथराते शरीर से नीली इलेक्ट्रॉन जैसी चिंगारियां बरसने लगती हैं। उसके प्रस्तरी होठों पर मुस्कान जैसा कंपन होता है और नेत्रों में बिजली के फूल सुलगने लगते हैं। वह और भी विस्मय विजड़ित हो जाता है जब प्रतिमा के भव्य ललाट के नीचे नासिका से रक्त टपकने लगता है, जैसे ब्रेन हैमरेज हो गया हो। काव्यनायक प्रतिमा को पिता के रूप में संबोधित करते हुए उसके ठंडे पैरों को सीने से चिपका लेता है। इसी समय पृष्ठ संख्या 26 विवेक का रंदा या वसूला उसके सिर और सीने को छीलने और तोड़ने लगता है और वह इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहता है कि सहसा ही बंदूकें फिर गरजने लगती हैं। नायक थक कर बैठ जाता है। उसे दूर दूर तक रोने कराहने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी क्रम में उसे ठंड से बचने के लिए बोरे में लिपटा कांपता हुआ एक आदमी दिखता है। इसी क्रम में उसे ठंड से बचने के लिए बोरे में लिपटा हुआ कांपता हुआ एक आदमी दिखता है, जिसे वह अपने मस्तिष्क पर बल देकर गांधी के रूप में पहचानता है, जो पंगु जैसे हो गए हो या फिर स्थितियों को भेद लेने के लिए रूप बदल कर आए हों, यह उनकी ओर बढ़ता है। किंतु गांधीनुमा व्यक्ति उसे अपने पास आने से रोक देता है और समझाता है कि भविष्य का उद्भव पुराने महापुरुषों से संभव नहीं होता, जनता के गुणों से होता है। वह ज्योतिर्मय व्यक्ति उसे एक शिशु सौंपता है और उसे सुरक्षित रखने संभालने के लिए कहता है। नायक शिशु को छाती कंधे गले से चिपकाए हुए गुफाओं से होते हुए दूर जाने के लिए भाग रहा है। बालक सहसा ही रो उठता है और उसके पुचकारने दुलारने और लोरी गाने के बावजूद वह रोता चीखता रहता है। भागने के क्रम में सहसा उसके कंधे पर बैठा शिशु गायब हो जाता है। उसके स्थान पर सूर्यमुखी फूलों के अस्तवक लक्षित होते हैं, जो अपने आलोक से उसके समूचे व्यक्तित्व को दीपित कर देते हैं। नायक किसी गली में एक खुला हुआ द्वार देखता है। अंदर सीढ़ियों पर दूर से आती डिबरी की रोशनी सी पड़ रही है। तभी कुसुम पुंज वजनी राइफल का रूप धारण कर लेते हैं। भीतर कमरे में से उसके पूर्व परिचित लोक हितैषी कलाकार का शव दिखता है, जिसके मस्तक में गोली मारी गई है। वह कुछ न कर पाने की आत्मग्लानि के साथ जीने से उतरता है कि आताताई सत्ता उसे पकड़ लेती है और यह यातना शिविर की भयानक यंत्रणाओं से गुजरता है, जहां उसे प्रतिबंधित आस्था नामक संस्था से जुड़ा और विचारों से गुप्त पर्चे वितरित करने वाला मानकर क्रास एग्जामिन किया जाता है। भीषण दैहिक यातनाएं सहकर भी वह अपनी आत्मशक्ति के बल पर किसी अन्य स्थान में एक पत्र के रूप में किसी की फटी हुई जेब में पहुंच जाता है और संकल्पशील होने लगता है। अगले खंड में उसे रिहा कर दिया जाता है, किंतु उसके पीछे गुप्तचर लगा दिए जाते हैं। वह अपने साथियों की खोज का संकल्प लेकर निकलता है, जिन्हें वह गुफा जल तथा पाताल में खिले हुए प्रेरणादायी विभिन्न रंगों के फूलों के रूप में देखता है। इस खोज की प्रक्रिया में उसे क्षितिज पर बिजली की नंगी लताओं से कई प्रकार के रेडियो एक्टिव रत्नों के समान फूल चुनने वाले हाथ दिखते हैं और वह भी बिजली के फूल बनाने का प्रयत्न करने लगता है। मुक्तिबोध यहाँ एक बार पुनः आत्म सजग हो उठते हैं। अपनी रचनात्मक क्षमता को लेकर जैसे उनमें एक विशिष्ट हीनता बोध है कि उनमें न बिजली की चमक है और न ही काले मेघ की भीमकारता। और इसी मनः स्थिति में वह काव्य नायक के द्वारा चुने गए रंगीन प्रस्तर कुसुमों की उपदेयता खारिज कर देते हैं। उनका तर्क है कि उनके मस्तक कुंड में जो आग जल रही है वह सतचित वेदना ही है, न कि सतचित आनंद की, और इसलिए उनकी मस्तक सिराएं निरंतर तनावग्रस्त रहती हैं। उन्हें बोध होता है कि अभिव्यक्ति भाषा विद्रोह के खतरे उठाए बिना प्रगति के अवरोधक सारे मठों और गढ़ों धार्मिक सामंती व्यवस्थाओं को तोड़ा नहीं जा सकेगा। ऐसा करने के बाद ही आकांक्षित लक्ष्य अरुण कमल को पाया जा सकेगा। यह अस्वस्तिकर फंतासी अधिक दूर तक नहीं चलती। उन्हें पुनः खंडहर उनमें असमय मुरझाते कुसुम याद आते हैं और वह एक बार फिर दम छोड़कर भागते हुए काव्य नायक में तब्दील हो जाते हैं। अतः काव्य नायक को यह अनुभव पाकर अस्वस्ति होती है कि लोग सत्ता के पृष्ठ संख्या 27 प्रतिरोध के लिए बौद्धिक बहस कर रहे हैं और सभी गुपचुप क्रांति के लिए सन्नद्ध हो रहे हैं। उसे अब एक विचित्र अनुभव होता है कि वह हर बार आगे बढ़ने की कोशिश में पीछे रह जाने की नीयत के बावजूद भीड़ के एक धक्के के साथ उसका नेता बन जाता है, जो उसी के विचारों से प्रेरणा लेकर अंधेरे में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। विडंबना यह है कि वह फिर भी अपने को बौद्धिक जुगाली करते हुए अकेला पाता है। वह गलियों के अंधेरों में भाग रहा है कि उसे कोई एक पर्चा थमा जाता है और आश्चर्य होता है कि उस पर्चे में उसी के विचार अनुभव तथा उसी की संवेदनाएं पीड़ाएं आलोकित हो रही हैं। उसे पढ़कर वह अपने को सर्वत्र सचेत उपस्थित एवं सक्रिय दृढ़ संकल्पशील नेता के रूप में पाता है। मुक्तिबोध एक बार पुनः मंच पर आते हैं और परिवर्तन की संभावना से अनुप्राणित होकर बोल उठते हैं कि पूंजीपतियों की मानसिकता को बदलना असंभव है। यद्यपि वह मुक्तिकामी जन को अब प्रवंचित नहीं कर सकती, हालांकि यह बात कविता के माध्यम से कहने के वह आदि नहीं है। मुक्तिबोध ने गद्य में उक्त प्रकरण का पर्याप्त विचार किया है और शायद वह इसे कविता में कहना अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अंतिम खंड 8वां का आरंभ पुनः आतंकपूर्ण फंतासी से होता है, जिसकी सूचना इस आवर्तक पंक्ति से मिलती है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर सन्नाटा है। लोग सुरक्षा के उद्देश्य से समूहों में रह रहे हैं। वर्दीधारी लोग यंत्रवत सर्वत्र घूम रहे हैं, जिनमें कुछ लोग वस्तुतः पहचाने से लगते हैं। साहित्यकार, कविजन, चिंतक, शिल्पी, नर्तक, पूरा बौद्धिक वर्ग चुप है, और वह अपने सुख विलास में मग्न रहकर आतंक और शोषण की वास्तविकता को एकमात्र किंवदंती मानता है। समाचार पत्र भी मनगढ़ंत समाचार छापते हैं। समूचा बौद्धिक वर्ग कृतदास बन जाता है, किंतु जनसाधारण में क्रांति की भावना उद्बुद्ध हो चुकी है। कण-कण में प्रतिकार की आग भड़क उठी है। यहाँ तक कि बच्चों के क्रंदन और उनकी स्लेटों तख्तियों ने भी जयनाद और संहारक शस्त्रों का रूप ले लिया है। छतों के गार्डर, स्तंभ, दादा की छड़ी और काका की लाठी सभी भयानक वेग से प्रतिघात के लिए हवाओं में उड़ रहे हैं। इनमें से प्रत्येक यम के समान प्राणग्नि, बम, ब्रह्मास्त्र और प्रक्षेपास्त्र हैं, जो शस्त्र पर अदम्य रूप से टूट पड़ा है। यह कथा नहीं है बंधु, यह सत्य है। कवि की टिप्पणी। इसी क्रम में सांवले बलिष्ठ लुहार के झांबे का बिंब उभरता है, जिसके पास कणों साधारण साधन का संबल है, किंतु जो लौह संकल्प शक्ति का परिचायक है। चारों ओर लाल क्रांति का वातावरण है। युगों से बहती आ रही वेदना नदियों में अभिरक्षकों और श्रमिकों की विकलताएं बिंबित हो रही हैं, और वे क्रांति चेतना की आग में निखर कर पवित्र हो गई हैं, जिनका जल पीकर युवकों के व्यक्तित्व में क्रांतिधर्मी परिवर्तन हो रहा है। यह व्यक्तित्वांतर इसलिए हुआ कि शोषण और दमन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। मुक्तिबोध कविता के समापन 8वें खंड का उत्तरार्ध में काव्य नायक के साथ सम्मिलित भूमिका का निर्वाह करते हुए लक्षित होते हैं। एकाएक स्वप्न भंग होता है, सारे स्वप्न बिंब बिखर जाते हैं और काव्य नायक फिर से अकेला हो जाता है। उसके मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, किंतु उन रंध्रों में ज्योति का रस निवसित हो चुका है। यह आलोक रस उसे एक रोमानी अनुभव का आकस्मिक प्रणय संदर्भ तक ले जाता है, और वह किसी अज्ञात प्रणयिनी, संभवतः जनक्रांति के संबंध में जिज्ञासा आतुर हो उठता है। सवेरे की धूप कमरे में पृष्ठ संख्या 28 आ गई है, और कवि नायक स्वप्न क्रिया की वास्तविक प्राप्ति की आकांक्षा की चरितार्थता को लेकर आशंकित है, व्यथित है। दिवा स्वप्न जैसी मनः स्थिति में उसे सर्वत्र एक हलचल, प्रत्येक वस्तु की निजी महिमा लक्षित होने लगती है। कवि के प्रिय महान ग्रंथों के लेखक उसकी इस मनः स्थिति के साक्षी से बन रहे हैं, और वह अपने को परम कृतकार्य मानने लगता है। कभी अपने कमरे से बाहर आकर गैलरी में खड़ा होता है और सहसा देखता है कि वही व्यक्ति उसकी आंखों के सामने सड़कों गलियों की भीड़ में से गुजरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। जिसे उसने गुहा में देखा था, वह उसे आवाज़ देना चाहता है, किंतु वह अब तक किसी दूसरी भीड़ में गुम हो जाता है। नायक कवि इस व्यक्ति को निज समृद्धि का परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति और अपना गुरु मानता है, जो उसे तिलस्मी खोह में प्रथम और अंतिम बार दिखा था। फटे हाल बिजली जैसा फुर्तीलापन, सकारात्मक राग भाव की अतिशयता और बौद्धिक तनाव की प्रतिमूर्ति। मुक्तिबोध उसे ही परम अभिव्यक्ति मानते हैं। वह विश्व में यत्र तत्र सर्वत्र निरंतर विचरण कर रही है, जाने कहाँ है, और इसलिए कवि या काव्य नायक उसको सर्वत्र खोज रहा है। हर गली में, हर सड़क पर, प्रत्येक चेहरे में, प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक चरित्र एवं प्रत्येक आत्मा के इतिहास में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक राजनैतिक परिस्थिति में, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूति, आदर्श एवं विवेक प्रक्रिया तथा उसकी क्रियागत परिणति में कवि उसे पठार, पर्वत, समुद्र, सभी दुर्गम स्थलों में भटकते हुए तलाश रहा है, क्योंकि वही उसकी खोई हुई अनिवार्य आत्म संभवा परम अभिव्यक्ति है।